जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जनंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा
कृपया सब लोग हाथ जोड़े और मेरे पीछे दोहराए,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मृदंग रख दीजिए। तो बहुत ही अब थोड़ा आगे आ जाएंगे आप लोग, अच्छा है, ताकि कुछ लोग अगर पीछे से आ गए भूलते भटकते तो कम से कम पीछे बैठ सकते हैं। आप लोग भी आ जाए, थोड़ा सा आ गए। तो बहुत ही सुंदर तिथि, बहुत सुंदर समय चल रहा है और मेरा सौभाग्य रहा कि आज मुझे गणपति गणेश जी के विषय में कुछ कुछ बोलने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है गणेश जी के ऊपर। एक्चुअली सुबह मैं गणेश जी का दर्शन कर रहा था, शायद तभी आरती समाप्त हुआ था क्योंकि आरती जल ही रहा था। तो मैं निकल रहा था मंदिर के लिए, तो मैं सुबह दर्शन कर रहा था तो मैं विचार कर रहा था कि अकेले था यहाँ पे, मैं विचार कर रहा था कि क्या किस रूप में मैं गणेश जी का सेवा करूँ इस बार। पिछली बार भी कई जगह पे मैं गणेश उत्सव में कई सोसाइटियों में कथा प्रवचन किया, तो मैं विचार कर रहा था कि यहाँ पे गणेश जी का स्थापना हुआ है और आप सब भक्त लोग श्रद्धालुओं ने मिलजुल कर गणेश का उत्सव कर रहे हैं, और पता नहीं मेरे से कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं मांगा गया, शायद सब लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो कुछ ना कुछ सब लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो मेरे पास कोई आया ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि माता जी समझते मैं किसी और लोग से आया हूँ क्या, इसलिए नहीं आया मैं भी इधर ही रहने वाला, इधर के ही हूँ। ऐसा मत समझिए कि अलग रूप है, हाँ सिर पे बाल लिए तो मैं कहीं और अलग लोग से आया हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग के बीच में का ही एक व्यक्ति हूँ, एक जीव हूँ। तो कभी भी आप बिंदास मेरे से कभी भी कोई भी बात रख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई आपत्ति मतलब उसमें कुछ विचार मत करिए। फिर भी मैं गणेश जी को सुबह दर्शन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या आपके लिए सेवा कर सकता हूँ। तो मन में ऐसा विचार आया, तो विचार आया तो मैं वापस गया, मैं जा रहा था मंदिर, जब विचार आया तो मैं वापस गया सीढ़ियों से, तब तक एक माता जी मिल गई, नित्य तृप्ता माता जी मिल गई। तो मेरे हाथ में कुछ प्रसादम था, माता जी को प्रसाद दिया मैंने, तो मैंने उस समय इस प्रस्ताव को रखा क्योंकि मैं चाहता था कि हो कि गणेश जी के विषय में मैं कुछ दो शब्द आप लोगों के सामने बोलूं, उनके लीलाओं के विषय में, वो कौन है, हम क्यों पूजा करते हैं उनको, उनका पूजा क्यों करना चाहिए, ये सारे बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों की। तो मैंने मेरे इस विचार में सेवा भाव करने का विचार जब उत्पन्न हुआ तो मैं माता जी को बोला, तो उस समय इन्फॉर्मेशन पास हुआ तो धीरे धीरे फैला। तो सबसे पहले तो मैं सारे सोसाइटी के सारे भक्तों का आभारी हूँ कि मुझे ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि गणेश जी के भी, गणेश जी एक बहुत विशेष जीव है, बहुत विशेष व्यक्तित्व तो है हमारे जीवन में, पूरे पूरे मनुष्य समाज में अगर गणेश जी का कुछ एक विशेष भूमिका है। तो अभी तक आप लोगों ने गणेश जी का दर्शन ना अपनी आंखों से किया है ना, कई दिन, दो दिन हो गया, दो दिन से तो अपने आंखों से दर्शन कर रहे हैं, और शायद तब के घरों में गणेश जी होंगे भी तो रोज अपनी आंखों से दर्शन करते हैं। लेकिन आज की विशेषता यह है, इस रात्रि की विशेषता यह है कि मैं आप लोगों को आंखों से नहीं कानों से दर्शन कराऊंगा। और वास्तव में शास्त्रों में वर्णन है इस बात का कि अगर हम भगवान के विषय में अपने कानों से जब श्रवण करते हैं ना, आंखों से दर्शन करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। वो कैसे? क्योंकि देखिए, अगर हम किसी के विषय में सुनते हैं तो उसके विषय में मनन शुरू हो जाता है, एक चित्र हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है। मान लीजिए जैसे कि मैं एक नाम ले लूं, मान लीजिए अमेरिका का नाम ले लिया, तो माइंड में क्या चला, अभी कुछ चित्र तो आ ही गया, जो भी हम जानते हैं वो आ गया, हमारा मन पहुंच भी गया अमेरिका है कि नहीं। तो अगर हम कानों से जो भी श्रवण करते हैं ना, एक्चुअली वो हमारे हृदय तक जाता है, और वो एक चित्र जो हमारे अंदर प्रकट होता है ना, वो हमारे हृदय को आनंदित करता है, आनंद देता है। तो शास्त्रों में, वेद और पुराणों में श्रवण की, और श्रवण की ज्यादा महिमा है। ऐसे हम जिस मंदिर में सेवा करते हैं, आप सबको मालूम होगा कि इस्कॉन मंदिर है, मैं वहां पे सेवा पूजा करता हूँ। तो हमारे जो इस इस्कॉन की स्थापना करने वाले जो आचार्य रहे ना, वो एक समय अपने गुरु जी के पास बैठ कर प्रवचन सुन रहे थे, बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम लगा हुआ था, और उस समय वहां पे बैठ कर प्रवचन, और भी अनेक बहुत सारे लोग बैठ कर प्रवचन सुन रहे थे, मंदिर था, मंदिर का प्रांगण था, मंदिर का हाल था, सब लोग प्रवचन सुन रहे थे। अचानक भगवान का दर्शन खुला, पट बंद था उस समय, जब कथा चल रही थी तो पट बंद था, और लेकिन जब दर्शन जैसे ही खुला तो बहुत सारे लोग उठ गए, भगवान का दर्शन करने चले गए। तो उस समय जो हमारे संस्था के संस्थापकाचार्य हैं, जो उस समय संस्था का स्थापना नहीं किए थे, उस समय पढ़ाई कर रहे थे वो, तो वो उठ के नहीं गए, तो उनके गुरु जी ने पूछा कि तुम उठ के क्यों नहीं गए, क्योंकि उस समय प्रभुपाद जी ने बोला कि कानों से श्रवण करने की महिमा बहुत ज्यादा है, कानों से दर्शन करने की महिमा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कानों से दर्शन करना चाहता हूँ। और कानों से दर्शन, कानों से जो सुनते हैं ना, उसका जो अंदर चित्र बनता है जो ना, वो हमेशा के लिए रहता है। आंखों से दर्शन करना उस समय यही हुआ कि उस समय उनके गुरु जी ने यही बोला कि इस समय जो दर्शन कर रहे हैं भगवान, हालांकि उनकी ही कथाओं की चर्चा चल रही है, भगवान की ही कथाओं की चर्चा चल रही है, लेकिन इस समय जो दर्शन करने के लिए कथा छोड़ के गया, वो कथा की महिमा को नहीं जानता है, वो मात्र भगवान का दर्शन करके एक्सरसाइज कर रहा है। सोचिए, अगर हम जिस एक व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए भरत भाई है, अगर मान लीजिए उनके विषय में हम सुनते हैं कुछ जाने, तब जाके हम उनसे जब मिलते हैं ना, तो उसका कुछ अलग ही विशेषता होता है। जैसे भगवान के विषय में, जैसे गणेश जी की स्थापना हुई है, तो हम गणेश जी की महिमा के विषय में अगर जानते हैं, अगर सुनते हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति प्रेम जो है ना, और बढ़ जाता है ना, प्रेम और बढ़ जाता है। तो प्रेम को प्रकट करने के लिए या प्रेम को प्रगाढ़ता देने के लिए हमको श्रवण करना बहुत जरूरी है, चाहे भगवान के विषय में हो, चाहे भक्ति विशेष के विषय में क्यों ना हो। तो आइए, बहुत ही सुंदर ये जो अभी रात्रि चल रहा है, गणेश जी का उत्सव चल रहा है, आज हम गणेश जी की कुछ कृपा को प्राप्त करेंगे, उनकी ही महिमा, वो कौन है, ये सब सारे चीजें जानकर तो हम उनके विषय में कुछ सुने। इससे पहले हम उनके कुछ स्तुतियों को, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे शक्ति अर्जित करते हैं ताकि हम उनके विषय में कुछ सुना पाए और आप लोग कुछ सुन पाए, क्योंकि बिना शक्ति अर्जित किए और बिना कृपा किए हम उनके विषय में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम कुछ प्रार्थनाओं को करते हैं, आप लोग ध्यान से उसको सुनिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे।
गजाननम् भूतगणादिसेवितम् कपेतजाम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकम् मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम् यं समर्यते भक्त्या तस्य विघ्नो न जायते तस्मै ददाति संतुष्टं सर्वान् कामाविनायक।
तो ये गणपति गणेश उत्सव जो है विशेषता, वैसे तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है लेकिन विशेषता गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है, गणेश उत्सव जो है, और वास्तव में मनाना भी चाहिए और मनाया जाना भी चाहिए। और विशेषता ये गुजरात और महाराष्ट्र में ना लोग घर घर में सालों साल गणेश जी की पूजा करते हैं। और गणेश ये जो चतुर्थी का जब उत्सव आता है तो उस समय क्या करते हैं, सोसाइटी में भी लाकर बहुत ही उत्सव, बहुत आनंद वाला उत्सव मनाते हैं। तो कोई लोग ये पूरा 10 दिन का उत्सव चलता है ना, पूरा 11 दिन का उत्सव चलता है पूरा, तो कोई 2-3 दिन तक मनाते हैं, कोई 6 दिन, कोई 5 दिन, जो भी है आप सब लोग को मालूम है। तो ये विशेषता ये जो धूमधाम से ये दो जगहों पे विशेष रूप से मनाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो आज हम उनके विषय में, शास्त्रों में वैसे तो गणेश जी के विषय में बहुत ज्यादा वर्णन है, जो कि हम कितने दिन तक उनके विषय में कथा भी 7 दिन तक कर ले तो भी संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए वैसे आप लोग सुनना कितना देर तक चाहते हो बता दीजिए पहले, क्या बात कर रहे हो आप लोग, कब तक बैठना चाहते हैं बताइए। 12 बजे तक, 11 बजे तक, साढ़े, क्या बात कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े यहाँ तो गणेश भक्त बैठे हुए हैं। 1 बजे तक सुबह ड्यूटी नहीं है। बहुत सुंदर, चिंता मत करिए मैं उठाता रहूंगा। तो गणेश जी के विषय में हम शुरुआत करते हैं। देखिए इस सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे सृष्टि का प्रथम जीव कौन है, सृष्टि का प्रथम जीव कौन है, कोई पता है किसी को, हम किनके संतान है ये भी नहीं पता। ब्रह्मा, भगवान ने जब सृष्टि, ये सृष्टि बनाया ना तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान के नाभि कमल से कमल का उत्पत्ति हुआ जिसमें ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, और ब्रह्मा जी से सारा जो जीव की सृष्टि ब्रह्मा जी ने सोचा। सबसे पहला सृष्टि कौन करते हैं, भगवान करते हैं, जिसको सर्ग सृष्टि बताया गया है। भागवत में वर्णन है कि अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण भूतया
वनवंतर ऐशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय अत्र सर्ग, सर्ग और विसर्ग ये दो प्रकार की सृष्टियां हैं। सर्ग मतलब जो सृष्टि भगवान करते हैं, भगवान कौन सी सृष्टि करते हैं? सर्ग। सर्ग मतलब पंच महाभूत। हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जो तत्व है ना, ये कौन बनाते हैं? भगवान, जिसको सर्ग सृष्टि बताया गया है। और इन तत्वों को लेकर, ये जो तत्व है ना, इन तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी जीवों की उत्पत्ति करते हैं। तो हम ब्रह्मा के संतान हैं, हमारी जो उत्पत्ति हुई ना, ये ब्रह्मा के द्वारा चलित हुई है। तो ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्म संहिता भगवान के विषय में ब्रह्म संहिता का रचना किया उन्होंने, उसमें भगवान के गुणों का, भगवान की महिमा का बखान करते हैं। और उसमें भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए वो गणेश जी के बारे में, गणपति गणेश जी के बारे में बताते हुए कहते हैं, यद् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रमाण समये सगणाधिराज विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में गणेश जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि विज्ञान विहंतु, सारे विघ्नों को नाश करने वाले गणेश जी हैं। और वैसे भी इस श्लोक के टीका में एक आचार्य कहते हैं कि आदि पूज्यम गणाधिश्च, इस संसार में अगर सर्वप्रथम किसी की पूजा होना चाहिए तो कौन है? गणेश जी। आदि पूज्यम गणाधिश्च, आप लोग आश्चर्य हो रहा है, अरे महाराज कृष्ण भक्त है, गणेश जी के बारे में कैसे बोल रहा है? हम गणेश भक्त भी है, हम गणेश भक्त भी है और कृष्ण भक्त भी है, और हम आपको बताते हैं कैसे है। आप जब पूरी कथा सुनेंगे तो पता चलेगा कि कैसे क्या है। तो आदि पूज्य गणाध्यक्ष, अगर इस संसार में अगर पूजा किसी की सर्वप्रथम होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? गणेश जी की पूजा होना चाहिए। एक समय की बात है कि देवगढ़ में, देवलोक में बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा हुआ। सारे देवता लोग, कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता है। सारे देव समाज में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि संसार में अगर अग्र पूजा होना चाहिए तो किसकी पूजा होना चाहिए? अग्र पूजा, प्रथम पूजा होना चाहिए तो किसकी पूजा होना चाहिए? एक बहुत बड़ा प्रश्न उठा। और इस प्रश्न का उसका समाधान करने के लिए सारे देवतागण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास लेकर इस प्रश्न को गए, कौन सा प्रश्न? कि संसार में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो उस ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, किसकी होनी चाहिए पूजा, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला कि उन 33 करोड़ देवी देवताओं को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने कि इस पृथ्वी का जो एक चक्कर लगाकर अगर वो मेरे पास जो सर्वप्रथम पहले आ जाएगा उसकी पूजा अग्र पूजा होगी, उसकी पहले पूजा होगी संसार में। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सारे देवी देवताओं को कि जो इस पूरे संसार, पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके जो सबसे पहले मेरे पास आएगा अग्र पूजा उसकी होगी। तो आप तो जानते हैं कि अलग अलग देवी देवता, इंद्र उसका सवारी हाथी है, सबके बड़े बड़े सवारियां हैं, किसी के घोड़े हैं, किसी के रथ है, किसी के पास अलग अलग सबकी सवारियां हैं, लेकिन गणेश जी का क्या सवारी है? मुसल सुहा, सबसे छोटा अगर सवारी है तो किसका है? गणेश जी का। तो ये बात जब जैसे ही ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया उस समय सारे देवी देवता सब लोग निकले दौड़ में, होता है ना वो दौड़ने वाला होता है ना रेसर, जैसे ही घंटी बजता है तुरंत भागते हैं सब। जैसे ही ब्रह्मा जी ने आदेश दिया सारे देवी देवता भागने लगे, सब लोग दौड़ते हैं पृथ्वी का परिक्रमा लगाने के लिए कि चलो जल्दी परिक्रमा लगा के हम आएंगे, पहले हम आएंगे ताकि अग्र पूजा हमारी होगी। लेकिन गणेश जी बड़े बुद्धिमान थे, और ब्रह्मा जी यही यही देखना चाहते थे कि कौन बुद्धिमान है, क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आना कोई साधारण बात थोड़ी है, लेकिन बुद्धि का उपयोग कौन करता है वो देखना चाहते थे ब्रह्मा जी। और अग्र पूजा तो उसी का होना चाहिए जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है ना। तो सारे देवी देवता निकल पड़े और उस समय गणेश जी, उनका सवारी तो छोटा सा सवारी, रथ बहुत छोटा सा है उनका, तो उन्होंने क्या किया गणेश जी ने, तुरंत ही कहीं नहीं गए, तुरंत ही उसी जगह पे बहुत सुंदर सा भगवान राम का नाम लिखा गणेश जी ने, भगवान राम भगवान विष्णु का वहां पे नाम लिखा, और नाम लिखकर उसका 7 बार परिक्रमा किया और ब्रह्मा जी को जाकर दंडवत प्रणाम किए, बोले कि मैं पूरी पृथ्वी का 7 बार चक्कर लगा के आ गया। तो ब्रह्मा जी देख के आश्चर्यचकित हो गए, वास्तव में ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी किससे उत्पत्ति हुए है, भगवान नारायण से उनकी उत्पत्ति हुआ है, तो ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान के अंदर एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, भगवान के अंदर हर एक रोम कूप से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। तो गणेश जी ने किसी एक ब्रह्मांड का, किसी एक पृथ्वी की कुछ परिक्रमा नहीं किया, उन्होंने भगवान के अंदर जितने भी करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है उन सारे का परिक्रमा 7 बार करके और सबसे पहले पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। और उस समय ब्रह्मा जी ने निर्देश दिया, सारे देवी देवता धीरे धीरे करके बाद में एक एक करके आए, और उस समय ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर अग्र पूजा किसी का होना चाहिए, आदि पूज्य कोई होना चाहिए तो कौन होना चाहिए, गणेश जी होना चाहिए। इसलिए उस समय से अग्र पूजा आदि पूज्य, आदि मतलब समझते हैं आप प्रथम, आदि मतलब आदि का एक शब्द होता है, एक अर्थ होता है प्रथम, प्रथम पूजा मतलब किसका, गणाध्यक्ष गणेश जी का। और एक आचार्य आदि शब्द का एक और अर्थ बताते हैं कि गणेश जी जो है ना आदि, आदि का मतलब नित्य रूप से, गणेश जी किसके पुत्र है, शिव और पार्वती के पुत्र है, लेकिन एक आचार्य बताते हैं कि शिव और पार्वती के पुत्र नहीं है। अगर तत्व की दृष्टिकोण से देखा जाए तो गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र नहीं है, ये तो लीला के दृष्टिकोण से लीला करना था उनको, इसलिए शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में आए। लेकिन आदि पूज्य, आदि का मतलब अनादिकाल से नित्य रूप से, वह जैसे भगवान कृष्ण देवती और वसुदेव को अपना माता पिता स्वीकार किए, लेकिन वह अनादिकाल से है, वो लीला करने के लिए गर्भ में आए और प्रकट हुए और लीला किए। इसी प्रकार से आदि, आदि का अर्थ है कि नित्य रूप से गणेश जी का अस्तित्व नित्य रूप से है, वह तो लीला करने के लिए शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में आए, तो इसलिए उनको आदि पूज्यम गणाधिष्ठ। देखिए इस संसार में हम देखते भी है कि कोई भी कार्य करे, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, चाहे घर का मुहूर्त हो, चाहे पूजन हो, कोई भी शादी विवाह हो, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो किसका पूजा पहले होता है, गणेश जी का होता है पूजा। और गणेश जी का पूजा क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्टेप लगाया आदि पूजा अग्र पूजा, अगर किसी का होना चाहिए तो किसका, गणेश जी का होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक आचार्य बहुत सुंदर बात एक्चुअली बताते हैं गणेश जी के विषय में कि वो अपना मंतव्य को रखते हैं एक्चुअली कि आदि पूज्यम गणेश जी आदि पूज्य है और अनादिकाल से है, नित्य रूप से है, वो ऐसा नहीं कि अभी शिव और पार्वती के इधर प्रकट हुए अभी से इनका अस्तित्व हुआ, ऐसा नहीं, वह उनसे पहले से थे। तो एक आचार्य एक घटना को बताते हैं कि एक दिन की बात है कि शिव जी का फैमिली कौन कौन, माता पार्वती के पुत्र, दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय। तो एक दिन गणेश जी की इच्छा हुई कि मेरे मम्मी पापा के शादी का एल्बम फोटो देखता हूँ। एक आचार्य अपने मनों के भाव को व्यक्त करते हैं कि आदि पूजा आदि पूज्यम के विषय में वो एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए कि गणेश जी की ऐसी इच्छा हुई एक दिन कि मेरे माता पिता जो शिव और पार्वती है उनके शादी का एल्बम फोटो मैं देखूं। तो उस समय जब वो फोटो देखने लगे ना तो पता क्या है, वो फोटो में गणेश जी भी थे। एक ऐसे संभव हो सकता है कि शादी से पहले गणेश जी प्रकट पुत्र के रूप में आ सकते हैं, कैसे संभव है? इससे यह पता चलता है कि गणेश जी जब इस शिव और पार्वती का भी पूजा हुआ ना, अरे शादी हुआ ना, तो उस समय भी गणेश की पूजा हुई थी, उस समय भी गणेश की पूजा की गई थी। इसका अर्थ यह है कि गणेश जी नित्य रूप से है, ऐसा नहीं कि वो तो लीला के दृष्टिकोण से लीला करने के लिए वो शिव और पार्वती के रूप में, पार्वती के इधर प्रकट हुए, उनका जन्म हुआ क्योंकि शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है तत्व के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गणेश जी का जो अस्तित्व है नित्य रूप से है। तो देखिए एक चीज और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि गणेश जो जब नाम हम सुनते हैं ना, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि गणेश कोई व्यक्ति नहीं है, गणेश क्या है, एक पोस्ट है। इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि बहुत कम लोग को पता होगा कि गणेश एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर व्यक्ति नहीं है, एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे कोई एक व्यक्ति और वो चेंज भी होता है ना। प्राइम मिनिस्टर का काल जो समाप्त होता है तो चेंज भी होता है ना, है ना। लेकिन वो जैसे एक पोस्ट है उस पे कोई भी व्यक्ति कभी भी आता है, लेकिन इसी प्रकार से गणेश जो है ना एक पोस्ट का नाम है, लेकिन इस पे अलग अलग समय में अलग अलग जीव जो कि विशेष जीव होते हैं वो आते हैं जैसे है। लेकिन ये विशेषता इनमें क्या है पता है? जैसे आप जानते हैं कि देखिए इस संसार में हर एक को कंट्रोल करने के लिए सारे देवी देवता लोग हैं। जैसे कि समुद्र को कंट्रोल कौन करते हैं? वरुण देव कंट्रोल करते हैं। आज समुद्र इतना पानी दिखता है और समुद्र के किनारे जाओ तो ऐसा लगता है कि बाढ़ आएगा, अभी हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी भी समुद्र अपना तट छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसके एक अधिष्ठाता देव है वरुण जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे बारिश हो रहा है, ये कौन बारिश दे रहा है, कौन बारिश कर रहा है? इंद्र, उनका काम है बारिश देना, वो इंद्र है, इंद्र जो कि बरसा देते हैं, बारिश कराते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजों पे अलग अलग देवताओं का राज है ना। अगर इस बारिश को बंद करना है तो अगर हम इंद्र देवता के तीव्रता से अगर उनकी पूजा करेंगे और उनका जो भी उनके शास्त्रों विधिवत अगर पूजा हम करेंगे तो इंद्र बारिश बंद भी कर देंगे, समझे ना। तो ऐसे ही ये जो गणेश जो है ना एक विशेष एक पोस्ट है जिसपे भगवान किसी विशेष जीव को रखते हैं, वो देखिए वो कोई अन्य नहीं आ सकता। जैसे कि ब्रह्मा, अगर हम ब्रह्मा बनना चाहे तो बन सकते हैं, अगर उस प्रकार से हम जो भी विधि बताया गया बन सकते हैं, इंद्र बनना चाहते बन सकते हैं, लेकिन गणेश जी का जो एक ऐसा पोस्ट है ना वो कोई साधारण जीव गणेश नहीं हो सकता है, गणेश साधारण जीव है। लेकिन विशेषता क्या है? अभी आप बोले कि आप इतना तीव्रता से गणेश जी के बारे में कैसे बोल रहे हैं, आप तो कृष्ण भक्त हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस बात देखिए कभी कभी क्या होता है, गणेश जी का कार्य क्या है? विघ्न हरता, सारे विघ्नों को हरण करते हैं गणेश जी, है कि नहीं? तो इस विघ्नों, क्योंकि अभी संसार में कितने विघ्न हैं, अगर मैं यहाँ पे सबको पूछना चालू करूं कि आपके जीवन में कितनी समस्या है तो बताने कितने दिन लग जाएंगे आपकी समस्या को सुनते सुनते, है ना, कितनी समस्या है। तो कोई इस पोस्ट को संभालना कोई मजाक बात नहीं है कि कितने लोग, क्योंकि विघ्न हरता कौन है? गणेश जी। और विघ्न आता तो लोग किसके पास जाते हैं? गणेश जी के पास जाते हैं। तो उस प्रकार की शक्ति भी चाहिए ना विघ्नों को दूर करने के लिए, इसलिए वहां पे विशेष व्यक्ति ही जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, विशेष जीव नहीं प्राप्त होता, कोई नहीं होता है, तो कौन जाते हैं? भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं गणेश बनते हैं, इस पोस्ट को लेते हैं, और इस बार का जो गणेश है ना स्वयं कृष्ण है, समझे? क्यों मैं इतनी तीव्रता से बोल रहा हूँ? क्योंकि इस बार का जो पोस्ट है ना गणेश का वो स्वयं कृष्ण है। मतलब आप लोग सोच लो कि गणेश की भक्ति कर रहे हो ना तो भी भगवान की भक्ति हो रही है, इसलिए बहुत ही विशेषता है। तो बहुत ही सुंदर। तो आइए हम कुछ कथाओं को श्रवण करते हैं भागवत से, गणेश जी के बारे में कुछ भागवत है। अभी भागवत आप सोचते हैं कि भागवत में तो केवल भगवान कृष्ण के बिना मुझे समय कथाएं, ऐसा नहीं है, गणेश जी के बारे में भी वर्णन आता है। देखिए मैं इम्पोर्टेंस बताऊंगा सबसे, अभी मैं इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, आगे चल के गणेश जी का जन्म भी कैसा था वो भी बताऊंगा, एक एक करके हम बताएंगे। लेकिन मैं इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनके इम्पोर्टेंस के विषय में जानेंगे ना तो हमारी तीव्रता, हमारी प्रेम उनके प्रति ना बहुत तीव्र हो जाएगा और सही लाभ प्राप्त करेंगे, उनकी कृपा हम प्राप्त करेंगे। इसलिए मैं उनके इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, कितना इम्पोर्टेंस है गणेश जी हमारे जीवन में। तो एक बार की घटना है कि देवराज इंद्र, जिनकी कृपा अभी चल रही है, जब भी प्रसन्न होते हैं ना तब बारिश करते हो, मतलब आज प्रसन्न है वो इसलिए बारिश हो रहा है, क्योंकि गणेश जी की महिमा चल रही है ना इसलिए बहुत प्रसन्न है। तो एक दिन की घटना है कि देवराज इंद्र अपने वाहन पे बैठकर वो भ्रमण कर रहे थे। उनका वाहन क्या है, देवराज इंद्र का वाहन क्या है, ऐरावत है ना, हाथी, हाथी उनका वाहन है। तो देवराज इंद्र हाथी के ऊपर बैठकर विचलित विचरण कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि नाम सुने सब लोग, दुर्वासा ऋषि का बहुत फेमस है, किसके फेमस है, श्राप देने में फेमस है, कौन बोला तो ऋषि दुर्वासा उस समय बैकुंठ में भगवान का दर्शन करके जा रहे थे, और भगवान का जब दर्शन किए तो उस समय भगवान ने उनको अपने गले का जो माला है वो दुर्वासा ऋषि को प्रदान किया था, वैजयंती जो माला भगवान पहनते हैं, दुर्वासा ऋषि को उन्होंने, भगवान ने उनको प्रसादी के रूप में दुर्वासा ऋषि को अपना हार दिया भगवान ने। और दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठ से निकल कर वह भी जा रहे थे, और उस समय क्या हुआ कि इंद्र विचरण कर रहे थे अपने वाहन पर बैठकर, हाथी के ऊपर बैठकर विचरण कर रहे थे, ऐरावत के ऊपर बैठकर। तो उस समय हुआ क्या कि दुर्वासा ऋषि भी आ रहे और इंद्र भी जा रहा है, और उनका एक दूसरे को मुलाकात हो गया, एक दूसरे को देखे। तो जैसे ही इंद्र ने देखा कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, लेकिन इंद्र उस हाथी के ऊपर बैठकर विचरण करते हुए इतना आनंदित हो रहा था कि वो दुर्वासा ऋषि का सत्कार करना भूल गया। यही होता है, क्या होता है कि जब व्यक्ति ना ऐश्वर्य, देखिए कुंती महारानी भागवतम में कहते हैं कि जब ऐश्वर्य व्यक्ति के पास आता है, धन आ जाता है ना, तो उसको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन का आना, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धन हमारे आप पास आ गया और उस धन को लेकर हम अहंकारी बन जाना, ये सबसे बड़ा उस व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। इस संसार में धन व्यक्ति के पास आ गया, अगर वो अहंकारी बन गया, अहंकार दिखाने लगा समाज में कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, और उसी समय धीरे धीरे उसका पतन शुरू होता है, और एक दिन वो व्यक्ति करोड़पति से रोडपति बन जाता। आप लोगों ने सुना रहेगा कितने लोग करोड़पति से रोडपति बन गए, कल करोड़पति थे आज रोडपति बन गए। ये केवल एकमात्र केवल किससे आता है, धन के अहंकार मद से आता है। और इंद्र का, इन स्वर्ग का राजा था और 33 करोड़ देव देवताओं का राजा इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठ के जा रहा है, लेकिन क्या किया, इतने बड़े ऋषि आ रहे हैं सामने से, लेकिन अपने वो क्या किया, अपने गाड़ी अपने वाहन से नीचे नहीं उतरा, नीचे नहीं उतरा। कभी भी अगर हम साधु संतों को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो सर है झुकना चाहिए, या उनको कुछ प्रणाम करना चाहिए, और मन ही मन प्रणाम करें, कुछ तो करना चाहिए। ये वर्णन है कि अगर हम भगवान के भी मंदिर में जाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि रोड पे मंदिर है और लोग जाते हैं और गाड़ी से कभी कभी हॉर्न भी बजाते हैं और कर करके ऐसा प्रणाम करके जाते हैं। एक्चुअली ये शास्त्रों के विधान से उचित नहीं है। एक्चुअली उचित यह है कि गाड़ी को खड़ा करो और उतर के गाओ, भगवान का दर्शन करो और वापस निकलो, ये विधान है, ना कि गाड़ी से ही ऐसा ऐसा कर देना, है ना, नहीं होना चाहिए। तो इंद्र ने देखा ऋषि को, लेकिन उस गाड़ी से उतरा नहीं, लेकिन फिर भी वो ऋषि महान ऋषि थे, इसलिए उन्होंने इस बात को लिया नहीं। साधु संत कभी भी ऐसे सारी चीजों को लेते नहीं है। तो हुआ क्या कम से कम इंद्र गाड़ी पे बैठे बैठे ऋषि को प्रणाम किया कि ऋषिवर प्रणाम, मेरा प्रणाम को स्वीकार करिए। तो उस ऋषि ने, दुर्वासा ऋषि ने क्या किया उसमें कि वो कहां से आए थे, वैकुंठ से आए थे, और क्या प्राप्त किए हुए थे, भगवान के माला प्रसादी प्राप्त किए हुए थे। तो ऋषि जब इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठे बैठे जब ऋषि को प्रणाम किया तो उस समय दुर्वासा ऋषि ने उस हार को इंद्र के गले में डाल दिया। प्रसन्न होकर जो भगवान का प्रसादी था वो किसके गले में डाल दिया, इंद्र के गले में डाल दिया। और इंद्र ने क्या किया, देखिए मद, जब मद व्यक्ति को होता है ना तो उसकी बुद्धि कैसे धीरे धीरे हो जाती है। देखिए जैसे ही दुर्वासा ने गले में हार डाला, गले में हार डाला कि नहीं, इंद्र ने उतारा तुरंत। आज के नेता लोग देखे हो ऐसे ही होते हैं ना, गले में हार डालो और तुरंत, आपने डाला नहीं को तुरंत उतारे नहीं, है ना, देखे ना नेताओं को आजकल के, उतार दे तुरंत, उधर दे देते दूसरे को। तो इंद्र, अभी इंद्र ने सोचा मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मैं तो सोने का हार पहनता हूँ, चांदी और डायमंड का हार पहनता हूँ, क्या ये फूल माला का हार पहना दिया मेरे को ऋषि ने, इसलिए तुरंत क्या किया उस हार को निकाल दिया। लेकिन वो हार साधारण कोई हार तो था नहीं, वैकुंठ से भगवान स्वयं ने दिया था। और इंद्र ने क्या किया, हार को निकाला तो निकाला, लेकिन क्या किया, अपने हाथी के सर के ऊपर रख दिया। कभी कभी देखते हो ना हार को लोग अपने गाड़ी पे लगाते हैं, है ना, हार को गाड़ी पे लेके बांध देते, गले में ना डाल के गाड़ी पे बांध देते हैं, है ना, गले में धारण करना चाहिए। चले अच्छा है, रात में गाड़ी पे भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो प्रसादी, वो महाप्रसाद है। तो इंद्र ने जैसे ही क्या किया, हाथी के सर पे हार को रख दिया। हाथी के सर पे हार को रखा तो हाथी का स्वभाव, वो तो है तो जानवर ही एक्चुअली में, तो हाथी के स्वभाव हो क्या जाने उस हार की महिमा। और उसने भी क्या किया, मुंडी को हिलाया और तुरंत ही हार नीचे गिरा और पैर से कुचल के आगे बढ़ गया। अब बताइए, अभी तक तो ऋषि आए और इंद्र अपने रथ से उतरा नहीं, ऋषि ने उसको सहन किया, लेकिन अभी जैसे हार भगवान का प्रसादी, भगवान का मिला हुआ हार को निरादर किया, उस समय तो ऋषि का क्रोध इतना भयंकर रूप से हुआ कि उसी समय दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, तुमको इतना धन का घमंड है, हाँ, इतना बड़ा मत वाला व्यक्ति हो गया है, तुम मतवाला हो चुका है, धन के अहंकार में तुम अंधा हो चुका है, जा तुम्हारी सारी धन संपत्ति छीन जाए, हाँ, तुम ऐश्वर्य विहीन हो जाओगे, श्राप दे डाला। और ऋषि का श्राप, और आजकल तो कोई कोई हमारे जैसे कोई ब्राह्मण नहीं थे कि श्राप देने से भी लगेगा नहीं है। और ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि थे, महान ऋषि थे, और जैसे ही श्राप दिया तुरंत ही, जब एक बात पता चला कि अभी इंद्र को श्राप मिला है, तुरंत ही स्वर्ग के ऊपर जितने भी असुर थे वो चढ़ाई कर दिए। असुर तो यही प्रतीक्षा करते रहते हैं कब स्वर्ग को हड़पा जाए और अपना राज उधर किया जाए, है ना। तो तुरंत ही सारे असुर लोग स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई किए और इंद्र को बेघर कर दिया, स्वर्ग से धक्का मार दिया, और स्वर्ग की गद्दी पे अभी कौन बैठ गया, सारे असुर लोग बैठ गए। अभी बेचारे क्या करे, हो गए ना करोड़पति से करोड़पति, कितना टाइम लगा, क्षण भर लगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, श्राप मिलते ही गए काम से। इसलिए भक्तों, धन का अभिमान ना कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। धन आए, ये देखिए भगवान की देन है, अगर हमारे पास धन आ भी रहा है तो उसकी इज्जत करें, कभी भी उस धन को लेके घमंड ना करें, कभी भी अहंकार ना करें, अहंकारी नहीं बने, नहीं तो वो धन धीरे, जिस दिन आपने अहंकार किया, दिखावा किया, उसी दिन धन का स्वभाव क्यों धीरे धीरे, वैसे भी धन का एक स्वभाव होता है, बोलते ना पैसा हाथ का मैल है, वो कभी भी आता है कभी भी चला जाता है, लेकिन उसमें अभी आप अहंकारी बनकर लोगों को दिखा रहे हो तो जल्दी जाता है। इसलिए कभी भी ऐश्वर्य का घमंड अपने जीवन में कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए स्वर्ग छिन गया, इंद्र बेघर हो गया, अभी इंद्र बेघर हो गया तो गया ब्रह्मा जी के पास। ऐसे कितनी बार हुआ, एक्चुअली इंद्र ने कई बार गलतियां किया, लेकिन बार 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 उसको भगवान ने रक्षा किया, सब लोग उनको ला दिए। क्यों पता है, भागवत में वर्णन है कि इंद्रारे व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे, भगवान का जो प्राकट्य होता है ना, इंद्रादि व्याकुलम लोकम क्यों होता है तो उसमें एक कारण बताया जाता है कि वो इंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। तो प्रश्न उठता है अगर इंद्र इतना गलती करता रहता तो बार बार उसकी क्यों रक्षा करते हैं। बार बार कोई एक व्यक्ति एक बार गलती करे दो बार गलती करे, एक बार तो गलती किया था तो गोवर्धन भगवान को उठाना पड़ा, इतना भयंकर मूसलाधार वर्षा करके ब्रज को डुबो दिया, कथा जानते हैं जिसके कारण भगवान को गोवर्धन धारण करना पड़ा। तो एक एक करके इंद्र अगर इस प्रकार की गलती करता है तो क्यों उसको बार बार भगवान क्यों बचाते हैं, क्योंकि इंद्र के अंदर ना एक बहुत विशेष गुण है। वह गुण क्या है पता है, गलती तो करता है लेकिन जाके अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए शरणागत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है गुनाह कर हम कुछ गलत कर बैठते हैं लेकिन उस गलत चीज को हम छुपा के बैठते हैं, वो बहुत बड़ा डेंजरस है। हमने कुछ गलत किया तो अपने गुरुजनों को अपने से जो श्रेष्ठ है उनके पास जाके सरेंडर होना चाहिए, उनको बता देना चाहिए और वो दुख उसी समय समाप्त हो जाता है। एक विशेषता है इंद्र के अंदर। तो इंद्र कहाँ पे गया, स्वर्ग छिन गया तो कहाँ पे गया, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी बोले भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलो चल के क्षीर सागर पे भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो क्षीर सागर में सारे देवी देवता जो भी थे सब लोग, अभी इंद्र का पोस्ट गया मतलब केवल इंद्र बेघर नहीं हुआ क्योंकि वो तो राजा था ना 33 करोड़ का, सारे 33 करोड़ गए। अब तो राज कौन कर रहा है वहां पे, असुर कर रहे हैं। तो सब लोग देवी देवता मिलकर क्षीर सागर में जाकर स्तुति करते हैं भगवान का, भगवान का स्तुति करते हैं। और उस समय भगवान बोलते हैं कि तुम क्या करो, जाके असुरों से मित्रता करो, जो असुर लोग तुम्हारी संपत्ति को छीन लिया है उससे जाके मित्रता करो, मित्र बनो उनका। इंद्र सोचा प्रभु क्या करवा रहे, अभी अभी उसके साथ युद्ध हुआ, हम पराजित हो गए, आप बोल रहे हो जाके उसके साथ मित्रता करो, ये कैसे संभव हो, वो तो मार के भगाएंगे हमको। तो भगवान बोले देखे मैं कौन सी मित्रता करने की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक दृष्टांत देते हैं भगवान, दृष्टांत देते हैं कि देखो मित्रता करना है लेकिन कैसी मित्रता करना है, दोस्ती बनाना लेकिन कितना हद तक बनाना है वो भगवान बताते हैं एक उदाहरण से, एक सर्प और चूहे का उदाहरण बताते हैं भगवान। सर्प और चूहे का उदाहरण बताते हैं, एक व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं जो सर्प को पकड़ता है, मदारी, मदारी बोलते हैं जो भी है। तो एक उस मदारी ने क्या किया, सर्प को पकड़ा। सर्प को पकड़ने के बाद किसमें रखते हैं, एक बास्केट होता है, बास्केट के अंदर बंद करके रख देता है सर्प को। तो मदारी ने क्या किया, सर्प को पकड़ा और सर्प को पकड़कर, एक कथा में क्यों बता रहा हूं, भगवान दृष्टांत देते हैं कैसी दोस्ती करो, देवताओं को असुरों से दोस्ती करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये दृष्टांत दे रहे हैं दोस्ती कैसी दोस्ती करो। तो उस मदारी ने क्या किया, सर्प को बंद किया बास्केट के अंदर, बास्केट के अंदर बंद किया। एक दिन बीता तो मदारी ने सोचा कि देखो सर्प को ऐसा बंद करके रखेंगे तो शायद कुछ दिनों में मर जाएगा, तो कुछ खाने पीने के लिए तो चाहिए ना कुछ, और सर्प का आहार क्या है, चूहा, बहुत ज्यादा चूहा खाता सर्प। तो मदारी ने क्या किया, एक चूहे को पकड़ा और उसके बास्केट के अंदर सर्प जिसमें बैठा हुआ था चूहे को डाल दिया, खा लेगा दो तीन दिन तो चलेगा, जीवित रहेगा। तो जैसे ही मदारी ने चूहे को बास्केट के अंदर डाला तो चूहा तो उसको सारी बत्ती गुल होगी उसकी, अभी उसकी मृत्यु सामने है, सोचिए कैसा सोचता रहेगा चूहा, अभी मृत्यु सामने, अभी ये मुझे खा जाएगा। लेकिन पता है उस सर्प ने क्या किया, अभी बास्केट में बंद किया हुआ मदारी सर्प को, सर्प अपने प्रयास से निकल नहीं सकता था इसलिए सर्प ने चूहे को खाया नहीं। जब चूहा डरने लगा तो सर्प ने क्या बोला, चिंता मत करो आज फ्रेंडशिप डे है, आज दोस्ती करने का है ना, मनाते हैं ना फ्रेंडशिप डे, आज मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। चूहे को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि सर्प कभी चूहा से दोस्ती करे हो नहीं सकता है, लेकिन आज चूहा क्या कर रहा है, अरे सर्प क्या बोल रहा है, आज दोस्ती करूंगा मैं तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो तुमको मैं खाऊंगा नहीं। लेकिन चूहा को विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो डर ही रहा है। लेकिन क्या किया सर्प ने, उस रात्रि उसने खाया नहीं। दूसरे दिन सुबह जब हुआ तो चूहे को थोड़ा धीरे धीरे विश्वास होने लगा, सच में लगता है कि मेरे से मित्रता है, मित्रता दोस्ती निभाया है, हमको खाएगा नहीं। तो उसका धीरे धीरे डर जाने लगा और जब डर जाने लगा तो ये महाशय बोलना प्रारंभ किए कि देखो ये दोनों, हम दोनों बंद है, जेल के अंदर हम दोनों बंद है, मदारी ने हमको बंद करके रखा है, मुक्त हम दोनों होना चाहते हैं, तुम भी बाहर निकलना चाहते हो और मैं भी बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेरे प्रयास से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन तुमको भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है ना कि कुछ भी तुम काट सकते हो, तुम्हारे दांत में इतनी शक्ति है ना, याद दिलाया उसकी शक्ति को, है ना, चूहा क्या क्या नहीं काटता है, तो सबको अनुभव होगा, अगर घर साफ नहीं रखते होंगे तो चूहा होगा। तो सर्प ने उस शक्ति को याद दिलाया कि तुम्हारे पास विशेष शक्ति है, तुम क्या करो, इस बास्केट को काटो और तुम भी मुक्त हो और मैं भी मुक्त है, दोनों निकल जाएंगे, दोस्ती बना लिया, दोस्ती काम है। और चूहे ने क्या किया, उस बास्केट में होल बनाना प्रारंभ किया, और कितना टाइम लगेगा चूहे को काटने में, और जल्दी से होल बना दिया, जैसे ही होल बना, और उस समय सर्प ने बोला कि थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अंदर बाहर जाकर हम निकल सकते हैं कि नहीं, तुम भी निकल सकता है कि नहीं। सर्प ने उस बिल से जो होल किया, तुरंत बाहर निकला, और बाहर निकल के और तुरंत ही उस होल के पास वापस मुंह ऐसा करके खड़ा हो गया, बोला कि अभी आओ चूहा जी। चूहा फिर बाहर निकला और सर्प उसको निकल गया, काम भी बना दिया, इसको बोलते बुद्धि का इस्तेमाल कर। काम भी बना, और यही दोस्ती करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, किसके साथ, असुरों के साथ। क्यों बोल रहे हैं पता है, ऐसी दोस्ती करने के लिए, क्योंकि जब तक तुम असुरों, इंद्र को भगवान बोल रहे हैं कि जब तक तुम असुरों के साथ दोस्ती नहीं करोगे, तब तक तुमको इंद्र जो स्वर्ग का राज पद है वो मिलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि स्वर्ग का, अगर स्वर्ग की प्राप्ति अगर वापस चाहते हो तो तुमको अमृत का पान करना पड़ेगा, और अमृत प्राप्त कहां से होगा, समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है अमृत, अन्यथा अमृत कहीं से भी प्राप्त नहीं होगा। और समुद्र मंथन करने के लिए तुम लोग के पास अभी शक्ति बचा ही नहीं है, सारी शक्ति छीण हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, इसलिए तो नीचे गिर गए, तो तुम लोग के पास इतनी शक्ति नहीं है, अभी बलवान है असुर लोग, उनसे मित्रता निभाओ और अमृत का प्रस्ताव दो, ताकि सब एक साथ मिलकर समुद्र का मंथन करे, ताकि अमृत की प्राप्ति होगी, और उसी अमृत को पान करके तुमको वापस स्वर्ग की प्राप्ति होगा। इस प्रकार से ऐसी दोस्ती निभाने के लिए भगवान ने बताया, किसको बताया, इंद्र को। तो अभी एन तेन प्रकार है ना, इंद्र गया असुरों के पास जाकर, धीरे धीरे उनके साथ एक प्रस्ताव को रखा अमृत का, और असुर भी धीरे 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 इस प्रस्ताव को माने, और हो गई दोस्ती। अभी दोस्ती हुई तो क्या गया, अभी समुद्र को मथना है तो इतना आसान बात नहीं है। पहले के समय में घर में भी हम दही मथते रहे, आजकल तो ग्राइंडर क्या क्या सब आ गया है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। जो गांव के माता जी लोग होंगे सबको पता होगा कि घर में एक बहुत बड़ा मटका होता था और उसके अंदर मथानी होता था, और सुबह बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, नो जिम में जाने की जरूरत नहीं, घर में एक्सरसाइज है, ये सब है ना, शरीर मेंटेन रहता था, हट्टे करते रहते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, हॉस्पिटल नहीं जाते थे। आपने सुना है कभी कि 100 साल पहले 80 साल पहले हॉस्पिटल होते थे, आज कितने हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल उस समय नहीं होते तो मतलब क्या है, कोई बीमार नहीं पड़ता था, आज हॉस्पिटल बाजू बाजू में हॉस्पिटल है, जिसको देखो हॉस्पिटल ही खोल रहा है, क्यों खोल रहा है, क्योंकि सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, बदले जा रहा है हॉस्पिटल है, क्योंकि जो वैदिक सिस्टम था ना एक जीव के जीने का, वो सब खत्म हो चुका है, वो खत्म हो गया, हमारी संस्कृति नाश हो चुकी है। तो इस प्रकार से अभी समुद्र को मथना, इतने बड़े विशाल समुद्र को अगर मथना है, अगर उसमें से अमृत प्राप्त करना, तो मथाने भी जो होगा वो अच्छा खासा मथाने रखना पड़ेगा। तो क्या किया गया, मंदराचल पर्वत, जो कि बहुत योजन बड़ा मंदराचल पर्वत को विचार किया गया कि उसको मथाने बनाया जाएगा। तो मंदराचल पर्वत को अभी क्या हुआ, असुर और सुर दोनों मिल गए, दोस्ती हो गया, तो दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने लगे, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए समुद्र के अंदर रख के मथेंगे, तब जाकर अमृत की प्राप्ति होगा। तो मंदराचल पर्वत को उठाकर सारे असुर और सुर देवता सब लोग मंदराचल पर्वत को उठाकर लेके वहां से समुद्र के अंदर लेके आना प्रारंभ किए। उस समय जब भी वो असुर और असुर दोनों देवता और असुर दोनों जब मंदराचल पर्वत को उठाए ना, क्योंकि ये आसान बात नहीं था पर्वत को उठाना, बहुत विशाल विकराल पर्वत था वो, तो जब ही उठाए तो उठाकर जब लेकर आने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, इतना वजन था, आप कभी कभी देखे ना भारी वस्तु जब आप उठा लेंगे तो धीरे धीरे बोला जाए कि भारी वस्तु उठाओ और चौथे माले पर चढ़ो, तो एक कंटिन्यू व्यक्ति नहीं जा पाता है, वो एक फ्लोर जाएगा उसको रखेगा फिर से उठाएगा फिर से जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना, देखते हैं ना। तो इतना पर्वत भारी था वो कि दोनों उठाए थे और धीरे 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 क्या हुआ, आते आते समुद्र के पास लेके आते आते उनकी शक्ति छीण होने लगी। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ पता है, अभी शक्ति छीण हो रहा है तो क्या करना चाहिए, उस समय थोड़ी देर तक रख देना चाहिए और उसके बाद उठा के वापस ले जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे समस्या क्या हुआ, कभी कभी सोचिए हमारे भी जीवन में होता है, अभी दोनों पर्वत को उठाए है, देवता और असुर दोनों उठाए, दोनों की शक्ति छीण हो रही, लेकिन कोई एक दूसरे को बोल नहीं रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है पता है, देवता सोच रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे कि हम थक गए ना तो असुर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हाँ कल न्यूज़पेपर में आ जाएगा कि देवता लोग के पास शक्ति ही नहीं है, और असुर लोग के माइंड में भी सेम चल रहा है कि अगर हम थक गए करके बोलेंगे तो देवता लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे, और इन दोनों चक्कर में कोई एक दूसरे को नहीं बोला और सब लेके चल रहे हैं और रखने की बात कोई एक दूसरे को नहीं किया, और हुआ क्या, क्या होगा बाद में, शक्ति क्षीण हुआ धीरे धीरे और वो मंदराचल पर्वत वापस अपने आप उठाना शक्ति खत्म हो बैठ गया, और कुछ लोग का पैर टूटा, कुछ लोग का हाथ टूटा, और कुछ लोग ज्यादा जो देशभक्ति दिखा रहे थे ना बीच में थे, वो तो पूरा हरी बोलोगे पूरा खत्म। देखिए एक दूसरे को बात करके अगर रख लिए होते हैं तो हो गया होता काम, लेकिन एक दूसरे को बात तक नहीं किए कि हमारा इज्जत का सवाल है, है ना, बोलते हैं ना हमारा इज्जत का सवाल है और इज्जत बचाने के लिए कुछ भी बोल दिए। तो अभी हुआ क्या उसमें, देखिए पहला घटना, सब पैर दुड़ा, अब क्या उठाएंगे, भगवान वहां पे एक अवतार लिए लेकर उन सारे लोग को जीवित किया, वापस जीवित किया वापस उनके पास शक्ति आया और वापस उठाए, और वापस उठाकर लेकर कैसे कैसे करके समुद्र के बीच में लेकर जब गए, तो समुद्र के जब बीच में लेकर गए तो दूसरी समस्या हुआ, अभी ध्यान रखिए समस्या शुरू हुई है, मैं एक कथा कर रहा हूँ गणेश जी के लिए और अभी उनकी प्रसंग आ रही है, इतना सब बताने के बाद भी उनका प्रसंग आएगा। पहली समस्या क्या हुआ, पर्वत गिरा, हाँ दोनों एक दूसरे को रेस्ट करने के विषय में बात नहीं किए और सबका हाथ पैर टूटा और भगवान एक रूप लिए और वापस जीवित किए सबको, फिर से उठाए लेकर कहां पे गए, समुद्र के अंदर गए, और दूसरी समस्या ये हो गई जैसे ही समुद्र में डाले वो पूरा पर्वत समुद्र के अंदर डूब गया। अब बताइए अब कैसे मथेंगे, पर्वत जिसको उठा के लाएगा वही डूब गया, सारी मेहनत खत्म। उस समय भगवान कच्छप अवतार, हमने देखा भगवान का कच्छप अवतार, भगवान ने कच्छप अवतार लिया और नीचे से उसको ऊपर लाया और उसको बेस दिया जिसके कारण वो टिक पाया और उसको फिर वासुकी नाग को मथनी बनाया गया, रस्सी बनाया गया, रस्सी को वासुकी नाग, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत था साधारण कोई रस्सी तो लग नहीं सकता था, इसलिए वासुकी नाग को उसमें लपेटा गया और एक साइड देवता और एक साइड असुर होके प्रारंभ किए मथना। उस समय जब भी भगवान कच्छप अवतार लिए उस समय देखिए समुद्र मंथन की कथा तो बहुत विकराल है, लेकिन उस समय भगवान जब प्रकट हुए ना तो ये सारी समस्या क्यों आ रही थी पता है, पर्वत उठाया गिर गया डूब गया इत्यादि इत्यादि बड़ी समस्याओं को झेला देवता और असुर सब लोगों ने बड़ी समस्याओं को झेला। उस समय भगवान प्रकट हुए, उन्होंने देखा कि लोगों ये सारी समस्या क्यों आई, क्यों, क्योंकि गणपति गणेश जी का पूजा प्रथम नहीं किया गया, प्रथम गणेश जी का पूजा नहीं किया गया इसलिए इतनी सारी समस्याओं को लेकर चले। इसका कहने का अर्थ है अगर हमारे जीवन में सुख समृद्धि चाहिए हमको, हम चाहते हैं कि हमारा जो कार्य है वो सब कुछ सक्सेस मिले, हमारे जीवन में सफलता प्राप्त हो, तो सर्वप्रथम हमको गणेश जी की पूजा और उनकी प्रार्थना और उनके परमिशन लेके हमको करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ से, इस सिद्धांत इस कथा से एक बहुत बड़ा सिद्धांत निकलता है कि देवता तक भी, हम तो मनुष्य है ना, देवता तक भी गणेश जी का अग्र पूजा नहीं किए, उनको इतनी सारी समस्या झेलना पड़ा। इस बात को स्वयं भगवान ही बताते हैं कि किस प्रकार से प्रथम जो पूजा होनी चाहिए वो किसका होना चाहिए, गणेश जी का होना चाहिए। तो ये गणेश जी का जो इम्पोर्टेंस है कि उनकी पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए ताकि सब सब प्रकार के विघ्न दूर हो, सारे प्रकार के। तो ये जो समुद्र मंथन की कथा है, जो कि भगवान ने असुर देवताओं को वापस धीरे धीरे अमृत की प्राप्ति, पहले तो क्या क्या निकला, पहले समुद्र मंथन में विष पहले निकला, सबसे पहले विष निकला है ना। उस समय शिव जी ने उसको धारण किया। शिव जी का भी जीवन देखिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अभी हमने सर्व एक कथा सुना ना, उसे एक मुझे एक चीज स्मरण आया। देखिए शिव जी का जो फैमिली है ना, आप देखेंगे ना, एक आचार्य नहीं एक कवि लोग हमेशा कविता लिखते रहते हैं ना, वो कविता ही लिखते हैं है ना। बारिश हो रहा है तो बारिश के ऊपर कविता लिखेंगे, वो लिखेंगे बैठ के, लेकिन बारिश में जाके नहाने का आनंद नहीं लेंगे, लेकिन कविता खूब लिखेंगे। कवि लोग होते, एक कवि मुझे ये सर्प और चूहे का उदाहरण दिया, उस पर दृष्टांत याद आ गया शिव जी का जीवन। तो वो कवि बताते हैं कि शिव जी ने जहर क्यों पिया, पता है? ये हास्य वाली बात है, तत्व का दृष्टिकोण और है। लेकिन वो कभी इस प्रकार का हास्य करते हुए कहते हैं कि शिव जी ने जहर क्यों पिया, क्योंकि वो पूरे अपनी फैमिली से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने जाके जहर पी लिया। तो मैं सोचा कि ऐसा कैसा परेशान हो गए थे, तो फिर विचार किया तो देखिए शिव जी के गले में क्या है, सर्प है। और शिव जी के जो पुत्र है गणेश जी, उनका सवारी क्या है, चूहा। तो कभी भी जब गणेश जी अपने पिता का दर्शन करने के लिए या कुछ बात करने के लिए जब आते हैं अपने सवारी में बैठ के, तो उस समय सर्प क्या करता है, चूहे के ऊपर नजर मारता है। तो उस समय गणेश जी बोलते हैं, पिताजी समझा दो, आपके घर में इधर देखे ना करके। तो फिर सर्प को समझाते हैं। अभी सर्प को समझाए, अभी तभी क्या होता है, कार्तिकेय आते हैं, और कार्तिकेय का क्या सवारी है, मोर। और मोर का हार क्या है, सर्प। अभी कार्तिकेय दर्शन करने आए तो मोर क्या हो रहा है, वो सर्प को घूर रहा है, है? तो सर्प बोलता है, शिव जी मैं इतने दिनों से आपके गले में हूं, अभी मुझे वो घूर रहा है, उसको समझा दो। अब बताइए किसको समझाए। और सब तो छोड़ो, इतना सारी समस्या चल रहा था, उसी समय पार्वती जी आई और अपने सवारी में बैठ के आए। उनका सवारी क्या है, शेर। अभी शेर तो सब सारे बौखला गए। खैर ये तो कभी ने इस बात को, लेकिन एक बात को यहाँ पे समझ सीखना भी चाहिए कि देखिए शिव जी इस प्रकार कैसे मैनेज करते होंगे अपने फैमिली को। तो जो ना, अगर ऐसी समस्याएं है, मान लो एक विचार उस पर किया भी जाए, आज हम फैमिली को लेकर कितना हमारे सब बीच में समस्याएं हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखिए कि शिव जी मैनेज जो करते थे ना, एक ही चीज करते थे, वो भक्त, भगवान के भक्त थे, इसलिए वो पूरी फैमिली को सुंदर तरीके से मैनेज करते थे। खैर उसके कारण जहर नहीं पिए थे, वो तो लोक हित के कारण, क्योंकि शिव जी की कृपा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। वो तो संसार, क्योंकि समुद्र जब मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला, और वो विष ऐसा था, अगर शिव जी उसको धारण नहीं करते ना, इस संसार खत्म होकर पूरा राख हो जाता। शिव जी ने सारे, वैसे भी शिव जी जो है ना जीवों के ऊपर बहुत कृपालु है, अरे सब जीवों को तो छोड़ो, उनको आशुतोष बोला जाता है ना, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष कहा जाते हैं, कहते हैं उनको, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और सब तो छोड़ो, जीवों के ऊपर तो कृपा करते हैं, वो भूत प्रेतों को भी ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है भूतनाथ, है ना, भूतनाथ। हो भूतों को भी कृपा करते हैं, भूत भूत क्या होते हैं समझते हैं आप लोग, भूत क्या होते हैं, किसी को मालूम है भूत क्या होते हैं, हम सुनते हैं ना भूत, भूत सुनते ही डर जाते हैं, माँ बच्चों को अगर डरा रहा है, माँ को तो भूत आया कुछ ऐसा बोलते हैं, डर जाता है वो, क्या होते हैं एक्चुअली भूत। और इन भूतों को गणेश का क्या नाम है, गण नायक, जो गण मतलब क्या, भूत प्रेत, जो शिव जी के गण है वो भूत प्रेत है ना, तो उनको जो कंट्रोल में रखता है उसको गण नायक बोलते हैं, उनके नायक गण नायक। गणेश जी का एक नाम है गण नायक, गणेश जी का 12 नाम है टोटल, उसमें से एक नाम है गण नायक, है ना, जो गण को भी कंट्रोल करे, इसलिए तो उनको विघ्नहर्ता बोला गया है ना। ये भूत प्रेत क्या करते, लोगों को तकलीफ देते हैं, लेकिन गणेश जी क्या करते, पकड़ के रखते हैं उनको, है? उससे रक्षा करते हैं। भूत एक्चुअली होते क्या है, इस बात अगर ये आ गया तो मैं समझाने देना चाहता हूँ कि भूत क्या होते हैं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, भूत के विषय में बताने जा रहा हूँ। ये जो शरीर है हमारा है ना, एक पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पंच महाभूत। ये पृथ्वी, ये शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, इसलिए क्या है मरने के बाद ये मिल जाता है मिट्टी में, है ना। तो ये शरीर में टोटल ना 10 तत्व है, ये शरीर में पंच महाभूत जो हमको दिख रहा है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है शरीर। तो ये पंच महाभूत हुआ। देखिए इसके डिटेल चर्चा है, कभी हम बाद में करेंगे, लेकिन मुख्य जो हम समझाना चाहते हैं उसको मैं समझा देता हूँ। मैं इसके तो विचार किया हूँ कि अपना नवरात्रि के बाद हम ये गीता के ऊपर चर्चा करेंगे, विशेष करके शरीर आत्मा ये सब क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम आप लोग को इन्विटेशन देंगे उसका, तो उसके विषय में बहुत सारे आप लोगों को प्रश्न भी इसके बारे में बहुत सारे होंगे, वो बाद में करेंगे हम, ये आपके नवरात्रि की बात करेंगे इसको। तो ये पंच शरीर, पंच महाभूत से बना हुआ है शरीर जो हमको दिख रहा है अभी, है ना, ये पांच तत्व हो गए, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर एक सूक्ष्म तत्व है, वह है क्या है, मन बुद्धि और अहंकार, एक दूसरा शरीर है, एक शरीर जो हमको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। ये जो शरीर है इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जो हमको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। और साथ ये टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8 हो गए, और 2 तत्व और है, आत्मा और परमात्मा, ये 2 तत्व और है ना, टोटल कितने हुए 10। तो होता क्या है, देखिए कि हर व्यक्ति को जो शरीर प्राप्त होता है ना, जो भी ब्रह्मा जी के माध्यम से धीरे धीरे जो भी माध्यम बनाया गया शरीर को उत्पत्ति के लिए, तो हमको जब ये जीवन मिलता है ना, तो इसकी एक अवधि भी निश्चित कर दी गई है, वो व्यक्ति मरेगा कब, निश्चित है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में हर एक जीव को जो शरीर प्राप्त होता है ना, वो शरीर कब खत्म होगा उसका भी जीवन अवधि निश्चित कर चुके हैं, निश्चित हो चुका है कि वो 80 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 100 साल जिएगा, एक हो गया ये ब्रह्मा जी के द्वारा मुहर मार दिया गया कितने साल जिएगा। लेकिन होता क्या है, मैं एक ही बता रहा हूँ, भूत होते क्या है वो समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि मान लीजिए ब्रह्मा जी के द्वारा उस व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति का निर्धारित आयुष 100 साल है, उसे कलयुग में 100 साल है, लेकिन आजकल कि जीवन ऐसी वाली 100 साल कोई जीता नहीं है, 80 साल अभी 60 साल भी बहुत हो गए, 60-65 साल 70 साल भी जिए तो बहुत हो गया, आजकल की पूरा लाइफ स्टाइल ऐसी बन चुकी है। तो ब्रह्मा जी ने मुहर मारा कितने साल का, मान लो 80 साल का मारा या 100 साल का मारा, ठीक है, निर्धारित आयु हमारी आ चुकी है। लेकिन होता क्या है बीच में, आकस्मिक मृत्यु, जिसको क्या बोलते हैं एक्सीडेंटल, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हुआ, चाहे गाड़ी से हुआ, किसी से जिसके एक्सीडेंटल आकस्मिक मृत्यु बोलते हैं, जिसको यार किसी ने किसी का हत्या कर दिया, अभी कोई व्यक्ति किसी का दिमाग फिर गया, वो किसी को मार देता है, तो वो व्यक्ति तो पहले मर जाता ना, ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कब का, लेकिन वो तो उसको मारा, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर जब ये बुरी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता था, उस सड़े हुए शरीर में आत्मा नहीं रहती कभी, आत्मा तुरंत छोड़ देती है शरीर, शरीर में आत्मा तभी रहती है जब ये शरीर स्वस्थ रहता है, तभी आत्मा रहती नहीं, तो उस शरीर में आत्मा रहती नहीं है। तो जब व्यक्ति का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है ना, तो उस समय क्या होता है, मन बुद्धि और अहंकार, क्योंकि ये जो स्थूल शरीर है उसमें छूट जाता है, आकस्मिक मृत्यु होने से ये जो स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर है, ये छूट जाता है, बचा कौन सा शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि और अहंकार, और वो आत्मा परमात्मा को लेकर वो निकल जाता है शरीर से। अब बताओ जाएगा किधर, निर्धारित आयु 80 साल है, वो व्यक्ति 50 साल में मर गया, शरीर छूट गया उसका आकस्मिक मृत्यु से, बचा कितना उसके जीवन में 30 साल बचा, तो उस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा और परमात्मा दोनों विचरण करते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं भूत, इसी को भूत बोलते हैं। क्या होता है कभी कभी, जो कुछ तंत्र विद्या जानने वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ही आत्माओं को पकड़ते हैं, अपने वशीभूत करते हैं और उसको एक शरीर में घुसाते हैं, क्योंकि ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये बहुत दुखदायक शरीर है, क्योंकि वो कभी भी किसी स्थूल शरीर में जाना चाहता है, क्योंकि उसको बहुत दर्द है। तो वो 30 साल उसको बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, वो चाहता है कि कोई शरीर हमको प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कुछ लोग जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं, किसी के अंदर डाल देते हैं, इसलिए उसका एक्टिविटी डबल हो जाता है, वो डबल खाने लगता है, डबल क्या क्या करने लगता है सारी चीजें। तो ये जो आकस्मिक मृत्यु होने के बाद और ब्रह्मा जी के निर्धारित आयु के बीच का जो अवधि ना, जितने साल वो जो विचरण कर दिया आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ, उसको कहते हैं भूत, वही भूत। और शिव जी की कृपा देखिए, शिव जी ऐसे लोगों को भी कृपा करके उनको जल्दी से मुक्त कर देते हैं। मतलब वो 30 साल भड़कने वाला था ना, शिव जी उनके ऊपर कृपा करते, उनको प्रीचिंग करते हैं, जैसे मैं आपको लोगों को उपदेश दे रहा हूँ ना, शिव जी उनको उपदेश देते हैं और उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं, उनको भगवान के बारे में बताते हैं, और ताकि उनकी जल्दी मुक्ति हो जाए, इसलिए लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसको बोलते हैं भूत। चलिए भूत का प्रसंग बहुत हो गया, ये बहुत बाद में समझेंगे, फिर बहुत तात्विक प्रसंग हो जाएगा नहीं तो। तो इस प्रकार से जो गणेश जी है वो गणनायन है, इन शिव जी को मदद करते हैं, पुत्र है ना उनके, मदद करते हैं इन गणों को प्रचार करने में, उनको सही रूप से शरीर प्राप्त हो जाए या उनका उद्धार हो जाए, ऐसे लोग को कंट्रोल करते हैं। और ऐसे जब विघ्न विनाशक है, ऐसे इनके शरण में जब हम जाते हैं ना, ये जो भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं आता है, क्योंकि इनकी कृपा करती है, नहीं तो हम परेशान है। इसलिए आदि पूज्यम गणेश, इस प्रकार से हमको गणपति जी का हमको पूजा करना चाहिए। तभी आइए हम जानते हैं कि गणेश जी का जन्म, वैसे मैं आशा करता हूँ कि गणेश जी के जन्म के विषय में कुछ लोग जानते होंगे। खैर ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं तो हम स्मरण कर ही लेते हैं उनका कैसे जन्म हुआ। गणेश जी का अभी ये लीला के दृष्टिकोण से जन्म हो रहा है, तत्व के दृष्टिकोण से गणेश जी क्या है, नित्य है, अनादिकाल से है, लेकिन लीला के दृष्टिकोण से उस पार्वती के जिधर कैसे प्रकट हुए उसका हम श्रवण करते हैं। एक दिन की घटना है, माता पार्वती बहुत सुंदर रूप से हल्दी में दूध मिलाकर और केसर डालकर इत्यादि बहुत सुंदर सा लेप बनाई, लेप बनाकर अपने शरीर के ऊपर लगाया, क्योंकि आज कल के स्त्रियां लगाते हैं ना सब लोग, लगाते कि नहीं, दुनिया भर के केमिकल लगाते हैं, लेकिन सीखिए शास्त्रों में क्या बताया गया है, जो घर के अंदर फ्री है उसको नहीं छुएंगे, जाके मार्केट से दुनिया भर का केमिकल खरीद के लाएंगे, उसको लगाएंगे और बेकार कर लेंगे। तो पार्वती ने बहुत सुंदर तरीके से लेपन किया, इस प्रकार से केसर चंदन युक्त बहुत सुंदर सा बनाया और उसको लेपन किया, और उसके बाद सूखने के पश्चात पूरे शरीर से लेप निकाला और स्नान करने गई। कहाँ पे स्नान करने गई, गंगा के किनारे स्नान करने गई। जब माता पार्वती स्नान करने गई वहां पे, तो सारा जो लेपन था वो लेपन बाहर निकाल के उसको विसर्जन करना था, गंगा जी में डालना था उस लेपन को। तो उसने क्या किया, जो भी लेप था वो निकाला बाहर और उसका एक सुंदर सा एक रूप दिया, सुंदर सा एक रूप देकर वो गंगा में विसर्जित कर दिया। तो उसी समय जैसे ही उस जो भी प्रोडक्ट था, जो भी हल्दी चंदन जो भी था, जैसे ही गंगा का स्पर्श हुआ, तुरंत ही गंगा के स्पर्श होने मात्र से वो एक सुंदर सा बालक के रूप में, वो तुरंत ही माता गंगा स्वयं अपने हाथों में प्रकट होकर उस बालक को लेकर प्रकट हो गई पार्वती के सामने। और वो बालक कोई और नहीं, वो गणेश जी है। और उस समय गंगा जी, इसलिए गणेश जी का एक नाम है गंगे, आप लोग जानते होंगे, तो गणेश जी का एक नाम गंगे है, क्योंकि वो गंगा जी से प्रकट हुए। और जैसे ही गंगा जी अपने हाथों में जब लेके उस बालक को आई पार्वती के सामने की माते, ये आपका पुत्र है, और उसी समय पार्वती के स्तनों से दूध निकलने लगा और तुरंत ही उस बालक को अपने स्तन को पान कराया और उसको लेकर वापस आए। अभी देखिए बहुत सुंदर था बालक, तभी ऐसा गज रूप नहीं था उनका, सुंदर सा चेहरा था, आज भी सुंदर है ऐसा नहीं कि, लेकिन नॉर्मल जैसे हम इमेजिन करते हैं, हम जैसे के रूप होना चाहिए। तो बहुत सुंदर सा बालक था, घर में पार्वती लेकर आ गई। ये बात शिव जी को पता नहीं है अभी तक। तो एक दिन की घटना है कि शिव जी आए भजन करके अपने घर पे, शिव जी भजन करते हैं कैलाश में बैठ कर, तो अपने जो भी कुटिया में आए पार्वती के पास पार्वती से मिलने के लिए, उस समय पार्वती स्नान कर रही थी और इस बालक को बोला था कि गेट पे, कुटिया के गेट पे खड़े रहो और किसी को अंदर मत आने देना। अपने पुत्र को बोला कि किसी को अंदर मत आने देना जब तक मेरा आदेश ना हो। मैं स्नान करके जब बाहर आऊंगी तो उस समय बताऊंगी, तब किसी को अंदर आने देना, दरवाजा खोलना। दरवाजे के पास माता पार्वती ने उस बालक को खड़ा कर दिया। उसी समय शिव जी आए, और जब शिव जी आए तो उस बालक ने, क्योंकि अभी तो जानते नहीं शिव जी मेरा पुत्र है, उनको पता नहीं, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं, और उस समय शिव जी जैसे आने लगे बालक ने रोक दिया उनको। बालक ने रोक दिया, बोला कि नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकते, वहां पे माता स्नान कर रही है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे पता नहीं कौन हो, जो भी हो आप बाद में, लेकिन अभी फिलहाल अंदर नहीं जाना है, माता का इंस्ट्रक्शन है, नहीं जाने दिया। दोनों में बहुत भयंकर बहस छिड़ गया और इतना बहस हुआ कि शिव जी क्रोधवश अपने त्रिशूल को उठाए और तुरंत उस बालक का गर्दन को उड़ा दिया। अभी हुआ क्या कि माता स्नान करके बाहर आई। अभी विचार करिए कि माता ने जब देखा कि अपने पुत्र का उसका गर्दन उड़ गया, और कौन उड़ाया, उनके ही पति ने उड़ाया। अभी सोचिए कि कितना क्रोध आया रहेगा उस माता को, माता पार्वती को, क्रोधित हो गई। और शिव जी ने देखा कि अभी माता इतना क्रोध कर रही है अगर, तो ये संसार भस्म भी हो सकता है, इसलिए तुरंत इस सिचुएशन को संभाला कि माते तुम पार्वती तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत इसके सर को वापस लगाता हूँ। तुरंत ही शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और तुरंत उनको भेजा, काम पे लगा दिया कि जाओ इस संसार बाहर निकलो और जो तुमको कोई भी मनुष्य दिख जाए और उसके गर्दन को लेकर आओ और उसको इस बालक के ऊपर लगाओ। शिव जी का आदेश, सारे गण लोग निकले और निकलकर सर्वप्रथम जिस जीव का, जिस मनुष्य को दिखाई दिया उनको, उनके गर्दन को काट कर लेकर आए और लगाए। देखिए अभी कुछ लोग का ऐसा करना है कि हाथी का मस्तक है ना, समाज में यही प्रचलित है कि हाथी का मस्तक, वास्तव में हाथी का मस्तक नहीं है गणेश जी का, यही सब बातें जानने लायक होती है, हाथी मस्तक नहीं है गणेश जी का। देखिए इस संसार में ना जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंसादी कृमिवृद्ध संख्या का पक्षिणाम दस लक्षणाम दिशल लक्षाणी पशु चतुर्थ लक्षाणी मानव 84 लाख प्रकार की दुनिया है इस संसार में, 84 लाख प्रकार की, उसमें जो है मनुष्यों की जो संख्या है ना वो 4 लाख प्रकार की है, 80 लाख प्रकार के अलग अलग है, कृमे और रुद्र संख्या है 11 लाख प्रकार के, अस्थावरा लक्ष्य विंसादी जल में 20 लाख प्रकार के, इत्यादि इत्यादि सब वर्णन है पद्म पुराण में। लेकिन इन 84 लाख योनियों में से जो 4 लाख योनि है ना वो मनुष्यों की योनि है, 4 लाख प्रकार के, 4 लाख नहीं 4 लाख प्रकार के, मतलब देखिए कभी भी आप देखेंगे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ शक्ल मिलता है अलग अलग। अभी यहाँ पे हम कुछ लोग बैठे हैं देख रहे हैं, हाँ कुछ वेस्टइंडीज वाले अलग दिखते हैं, हाँ दूसरे केनिया वाले अलग दिखते हैं, सबका अलग अलग सूरत शक्ल। तो इस प्रकार से ऐसे 4 लाख प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्या है मनुष्य है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, और उसमें एक योनि है जिस योनि का नाम है विनायक योनि। तो जब शिव जी के गण जब निकले, क्योंकि शिव जी ने बोला था कि जो प्रथम मनुष्य दिखेगा उसको सिर को लेके आना, तो उस समय विनायक योनि का मनुष्य दिखा हुआ था जिसका सिर काट कर लेकर आए, और ये हाथी का सिर नहीं है, ये विनायक योनि के मनुष्य का सिर है गणेश जी का, विनायक योनि के मनुष्य का सिर है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हनुमान जी सुग्रीव जी ये बंदर है, बंदर नहीं है, बंदर नहीं हो वो, किंग पुरुष लोग के पुरुष है वो, किंग पुरुष लोग के लोग वैसे ही होते हैं। 84 लाख प्रकार की जो योनियां बताई गई मनुष्यों की ना, उसमें से एक एक योनि है विनायक योनि और एक योनि है किंग पुरुष लोग। तो वो किंग पुरुष मतलब वो सकल बंदर के जैसा दिखता है, लेकिन है वो मनुष्य। ऐसे ही विनायक योनि के सर को लेकर आए थे, इसलिए उनका सर ये हस्ती सर है। तो ये इस प्रकार से जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी में शुरुआत किया था ब्रह्मा जी के ब्रह्म संहिता के श्लोक से, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि द्वंदे प्रणाम समये सगणादि राजा। ये जो गणेश जी को जो शक्ति होता है जिससे कि वो लोगों की रक्षा करते हैं ना, ये कहां से प्राप्त होता है बताया आप लोगों को? द्वंदे प्रमाण समय सगणादि राजा, उनके दो सिर है, मुकुट लगा हुआ है लेकिन दो सिर है, दो सिर है, हस्ती का होता है ना जैसा जो दो, तो वो जब भगवान इनके जो मूल विघ्न, इस संसार में दो लोग विघ्न विनाशक है, एक है भगवान नरसिंह देव, दूसरे है गणेश जी, जो विघ्नों को दूर करते हैं, जो वैष्णव लोग होते हैं नरसिंह देव की पूजा स्तुति करते हैं, और जो और भी जो जीव होते हैं वो गणपति महाराज का करते हैं, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, उनके ही बोलते हैं उनका ही रूप है गणपति रूप, नरसिंह भगवान का ही, दोनों में कोई, तो कुछ वैष्णव होते हैं नरसिंह देव को स्तुति पूजा करते हैं और बाकी लोग गणेश जी का करते हैं, दोनों में अंतर है, तो उनके जो मूल विग्रह है ना नरसिंह देव है, और वहां पे वो जब भी प्रणाम करते हैं उस समय वहां से शक्ति अर्जित करके पूरे संसार का वह दोष को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से जो गणेश जी है बहुत ही विशेष है हम सबके लिए, और उनका पता है विशेष कान विशेष है उनका, गजकर्ण है ना हाथी के, वो सब कुछ हाथी जैसा है, इसलिए लोग सोचते हैं कि हाथी का सर है, लेकिन नहीं, ये विनायक योनि का सर है, मनुष्य का ही सर है। तो कान क्यों बड़े पता है? कान इसलिए बड़ा है उनका, क्योंकि वो हमेशा भगवान के बारे में, कथाओं के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग पूजा जब करते हो ना, मैं इनडायरेक्टली देखिए सब लोग करते हैं, सब लोग उनको प्रसन्न करने वाला कार्य करते हैं लेकिन जानते नहीं है, सब लोग अर्थिक पूजा कर लेते तो क्या करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, अंतिम में बोलते हैं गणेश जी को प्रसन्न करने के, लास्ट में भगवान का नाम को सुनाते हैं, है ना, कहते ना कि नहीं कहते, है ना, अंत में कहते हैं ना भगवान का नाम, और इसी नाम को सुनने के लिए वो बड़ा कान धारण किए हुए है, उनकी कथाओं को सुनने के लिए बड़ा कान धारण किए हुए है। देखिए एक प्रमाण मैं देता हूं कि गणेश जी का जो कान है ना किस प्रकार से तत्पर रहता है भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। घटना वहां की है कि बद्रीनाथ धाम की घटना है, कोई गए बद्रीनाथ धाम? हम गए, तो वहां पे वेद व्यास जी ने देखा कि इस कलयुग के जीवों का मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाधता, इस कलयुग के जो जीव है ना उनकी बुद्धि मंद होगी सबसे पहला, उनके भाग्य भी मंद होंगे इस कलयुग के जीवों की, तो इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, सारे वेद और शास्त्रों पुराणों को जो कि पहले लोग सुन के ग्रहण करते थे उसको लिखीबद्ध, लिखने के लिए सोचा कि जब इसको लिखीबद्ध कर देते हैं, लिपि कर देते हैं, ताकि संसार के इस कलयुग के जीव लोग उसको पढ़े और पढ़ कर अर्जित करें, क्योंकि सुनने से याद नहीं रहने वाला है, इसलिए उन्होंने सारे श्रुतियों पुराण इत्यादि उपनिषद को लिखीबद्ध करने का सोचा, लेकिन कार्य लिखने का करेगा कौन, कौन लिखने का कार्य करेगा? तब उस समय वेद व्यास ने देखा कि जिसको भगवान के विषय में ज्यादा रुचि है सुनने का, जो भगवान के विषय में ज्यादा सुनने की तीव्रता रखता है, ऐसे गणेश जी को चुना, क्योंकि उनके बड़े बड़े कान उन्होंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भगवान से मांगा है उन्होंने इस कान को बड़ा करने के लिए, हमको ये छोटे कानों से आपकी कथाओं को सुनने के लिए नहीं होता, आप मुझे बड़े कान दीजिए। तो उस समय वेद व्यास जी ने उनको याद किया गणपति जी को, और उन्होंने बद्रीनाथ धाम में उस व्यास गुफा में जब वेद और शास्त्रों को लिखना प्रारंभ किया तो उस समय गणेश जी सबको लिखे। तो आज जो भी शास्त्र आपको मिल रहा है ना, ये सब किसने लिखा है? गणेश जी ने लिखा हुआ है। तो उस समय देखिए वेद व्यास जी बोलते जा रहे हैं, कथाओं को बोलते जा रहे हैं वेद व्यास जी, और गणेश जी लिखते जा रहे हैं। और हुआ क्या, मैं उनकी तीव्रता बता रहा हूँ कि कितना तीव्रता था उनका भगवान का नाम सुनने के लिए। तो उनकी तीव्रता देखिए कि उस समय गणेश जी लिखते और वेद व्यास जी बोलते जा रहे हैं, और वो लिखते स्याही खत्म हो गई अचानक। जब स्याही खत्म हो गई तो स्याही पाने के लिए देखिए कि हिमालय के ऊपरी छोर पे व्यास गुफा है, और वहां पे कोई दुकान नहीं है कि जहां पे स्याही लेकर आ जाए, और नीचे आए हरिद्वार तब तक तो कथा कितनी चली जाएगी, अभी तो रुकने वाली नहीं है व्यास जी की कथा। इसलिए तुरंत ही उस समय गणेश जी बिना विलंब किए तुरंत ही अपने ही हाथों से अपने एक दांत को तो उन्होंने तोड़ा और तुरंत ही भगवान की कथाओं को लिखना प्रारंभ किया, इसलिए उनका एक दांत जो है टूटा हुआ है और कथाओं को, और किस पे लिखना चालू किया, पत्थर के ऊपर लिखना चालू किया। आज भी वो जगह है जहां पे गणेश जी ने लिखा हुआ है, आज भी वो पत्थर है जिस पे भागवत को लिखा हुआ है गणेश जी ने। कभी आप बद्रीनाथ धाम जाएं तो वहां पे व्यास गुफा है, वहां पे देखिए आज भी वो सारे जगह है। तो गणेश जी का एक दांत जो टूटा हुआ, क्यों टूटा हुआ वो भी पता चल गया, देखिए वो कितने बचा कितना हमने। तो अभी चलिए अंतिम में एक धीरे धीरे खत्म करते हैं, अंतिम में एक बात को जो कि आप लोग खत्म करके कहते हैं और हम भी उसी तरह से समापन करें, और अंत में हम गणेश जी का जब आरती करते हैं और अंत में क्या करते हैं, एक बहुत सुंदर सा श्लोक का उच्चारण करते हैं। क्या है वो श्लोक, याद नहीं है किसी को है? और एक श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव आगे नारायण देवा, सब लोग साथ में, काये न वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वानु सुत स्वभाव करोति यद्यत् सकलं सनित्यं नारायणं समर्पयते। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना। इससे समापन करते हैं, तभी देखिए ये हम उच्चारण करके समापन करते हैं, सबको मालूम है, सबको याद है, हैं? लेकिन इसका अर्थ हमको नहीं पता है। अगर इसके अर्थ को हम अगर जान लेना, सबसे ज्यादा खुशी अगर गणेश जी होता है, जो ये अर्थ को आत्मसात कर लेना गणेश जी उसके ऊपर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। थोड़ा सा इस अर्थ को हम समझते हुए खत्म करते हैं, क्योंकि ये विशेष है, क्योंकि हम आप सभी लोग करते हैं इस बात को। शब्द से ही देखिए, कायेन, कायेन मतलब काया, ये शरीर, कायेन वाचा वाणी, है ना, दो शब्द हो गए, शरीर और वाणी, कायेन वाचा मनसा मन, इंद्रिय हमारे इंद्रिय हाथ जो भी पैर नाक जो भी इंद्रियां हैं, और स्वभाव हमारा स्वभाव है ना, और क्या है बुद्ध्यात्मना बुद्धि, है ना, वो क्या करो करोति यत् सकलम सनित्यम, ये सारे चीज से नारायण समर्पयति, हम ये सारे चीज को नारायण को समर्पित कर दे, यही सबसे बड़ी भक्ति है गणेश जी का। इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, लेकिन कैसा पढ़ते पता है, उस चिड़िया उस पक्षियों के तरह हम सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि शिकारी से कुछ चिड़िया लोग बहुत परेशान थे, वो आता था जाल बिछाता था चारा डालता था उसको बांध के लेके चला जाता था। तो एक साधु आए और उन पक्षियों को बहुत सुंदर सा एक मंत्र दिया, सुंदर सा मंत्र दिया कि तुमको शिकारी के जाल में नहीं फंसना ना, एक मंत्र को ध्यान रखना और तुम लोग कभी भी जाल में फंसोगे नहीं। वो मंत्र क्या था, शिकारी आएगा दाना डालेगा और उसमें जाल बिछाएगा और उसमें फंसना मत, ये मंत्र दिया साधु ने। मंत्र किसको दिया, चिड़िया लोग को दिया, पक्षियों को दिया। क्या दिया मंत्र, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा मगर फंसना मत, इसको ध्यान रखना। और ये मंत्र देके साधु चला गया। अभी क्या हुआ, रट रहे, अभी मंत्र मिल गया ना, अभी बचने का मंत्र मिल गया, सब सारे चिड़िया लोग एक साथ मिलकर, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा मगर फंसना नहीं है, सब लोग रट रहे। और उसी बीच में शिकारी आया, दाना भी डाला, जाल भी बिछाया, और वो सारे लोग चुगने भी गए और उसमें फंस भी गए, और मंत्र भी बोल रहे और बांध भी लिया। हमारी स्थिति ऐसी है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव, सब कुछ समर्पण, लेकिन केवल वो तोते की तरह वो पक्षियों की तरह रट लिए है, लेकिन उसको आत्मा साथ नहीं किए है, इसलिए हम फंसते हैं। बोलते हैं ना कि मैं तो इतना भक्ति करती हूँ, इतना आरती करती हूँ, इतना पूजा करती हूँ, फिर भी समस्या है, हमारे इतना समस्या क्यों आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बस यही है कि हम मुंह से बोलते हैं, उसको आत्मसात कर ले, जिस दिन उस दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आत्मसात कोई भी चीज को, देखिए आत्मसात करना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको आत्मसात करना चाहिए, है ना। गणेश जी की यही इच्छा है कि सब कुछ समर्पित, और लास्ट में इसी से वो प्रसन्न होते हैं। देखिए एक छोटी सी और उदाहरण मुझे याद आ गया, रामायण का प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है इस बात के ऊपर, कि एक बार जब उस समय की घटना याद रखिए आप लोग, या ध्यान करिए कि जब भी भगवान
विश्वामित्र के पास भगवान राम गए और वहां पे विश्वामित्र के साथ में अभी उस जगह पे जनक महाराज के इधर गए जहां पे सीता स्वयंवर होने वाला था, सीता स्वयंवर होने वाला था और भगवान राम का विवाह सीता से होने वाला है ना, अभी हुआ नहीं है। तो हुआ क्या कि सीता ने भगवान राम को तो वाटिका में पहले ही देख लिया था और अपना पति पहले ही मन से अपने पति चुन लिया था कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, पहले ये समारोह रखने से पहले। तो अभी क्या हुआ कि जब जनक महाराज ने बहुत बड़ी सभा आयोजित किया जब ही, तो उस समय उन्होंने प्रस्ताव क्या रखा था सीता स्वयंवर का कि उनके पास एक धनुष था, वो धनुष किसका था, परशुराम जी का था, शिव ने परशुराम को दिया और परशुराम ने उनको जनक जी को दिया था। और वर्णन है रामायण में, ये प्रसंग बहुत लंबा है लेकिन मैं शॉर्ट में खत्म करता हूँ कि जब ही वर्णन है कि जब ही एक धनुष जनक महाराज को मिला था ना, लाखों लोग इस धनुष को उठाकर लेके बड़ी मुश्किल से जनक दरबार में लेकर आए थे, इतना इतना वजन था। संसार में देखिए तीन धनुष ना बहुत फेमस हुआ, भगवान विष्णु का सारंग धनुष और अर्जुन का गांडीव और भगवान इनका शिव का पिनाक, ये धनुष का नाम था पिनाक, ये शिव धनुष था। इतना वजन था ये धनुष कि उसको डिलीवरी करने के लिए जनक के राज्य दरबार में डिलीवरी करने के लिए कितने लाखों सैनिक उनके लगे हुए थे, बड़ी मुश्किल से डिलीवर हुआ था। लेकिन एक दिन की घटना है कि सीता जी जो भी झाड़ू पोछा कर रहे हैं दिन का कार्य दैनिक कार्य करते करते उनका धनुष के पास तो गई, तो सर जी बहुत दिनों से धनुष पड़ा हुआ, थोड़ा उठा के इसको झाड़ू मार लेते हो। तो सीता ने एक हाथ से झाड़ू मारे, दूसरे हाथ से धनुष उठाई और ऐसा उठाकर झाड़ू मार के वापस रख दिया। एक दृश्य देख लिया कौन, जनक महाराज ने, उनके पिताजी ने, और देखा तो आश्चर्य हो गया, जिस धनुष का यहाँ पे डिलीवरी करने के लिए, यहाँ पे लाने के लिए इतने सैनिकों को मैंने लगाया हुआ था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया, और उस धनुष को सीता ने अपने लेफ्ट हैंड से उठाया और वापस रख दिया। मतलब ये कोई विशेष व्यक्ति है, इसलिए इसका विवाह भी मैं किसी विशेष ही व्यक्ति से करूंगा, इस संसार के किसी और जीव से नहीं करूंगा। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखा, बड़ी स्वयंवर का रचना किया, ये शर्त क्या रखा कि जो इस धनुष को उठाएगा उसका विवाह सीता से करूंगा, और न्यूज़पेपर में डाल दिया। सारे लोग राजा महाराजा, क्योंकि सीता की सुंदरता सब लोग को पता था, पूरा विश्व विख्यात था सीता माता की सुंदरता, और सारे महाराज राजा महाराजा लोग सब लोग उस सभा में उपस्थित हुए, सीता स्वयंवर में उपस्थित है। वर्णन है कि एक एक करके सब लोग, ये सारे प्रसंग आप जानते हैं, देखे होंगे टीवी में भी इत्यादि जो भी है, तो एक एक करके सारे राजा आ रहे, वो धनुष को उठाना तो छोड़ो हिला तक नहीं पाए। और यहां तक वर्णन है रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं कि जब वो धनुष को पकड़ते थे ना राजा लोग, उसकी सारी शक्ति छीण हो जाती थी, जब छूते थे ना सारी शक्ति अपने आप निकल जाती थी, कोई राजा नहीं उठा पाया उसको। और यहां तक वर्णन है कि एक साथ में भूमि सहस्त्र एक ही बारा लगे उठावन हरी तरही नटारा, निग दिन शंभु चराचर कैसे कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कि एक कामी पुरुष होता है जो सती स्त्री होती है ना, उसके मन को कितना भी प्रयास कर ले वो विचलित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार यहाँ पे सारे राजा मिलकर एक साथ में, हजारों राजा मिलकर भी उस धनुष को पकड़े और हिला तक नहीं पाए, उस समय सब लोग फेल हो गए। उस समय जनक जनाउंस के क्या कोई इस सभा में कोई वीर बचा ही नहीं है, धिक्कार है तुमको, सारे राजाओं को धिक्कारने लगे जनक महाराज। और उस समय क्योंकि अभी राम भगवान वहां पे बैठे हुए, लक्ष्मण भी बैठे हुए, राम भी बैठे हुए, लेकिन क्या करे, आज्ञा नहीं है गुरु की, विश्वामित्र की अभी तक आज्ञा नहीं हुई है, और कभी भी गुरु की आज्ञा के बिना वो जा नहीं सकते थे। और जब विश्वामित्र ने ये देखा, उस समय अभी वर्णन है कि जब जनक महाराज ना जब अनाउंस कर रहे थे कि क्या इस संसार इस धरती पे सारे नपुंसक लोग पड़े हैं, इतने बड़े बड़े वीर राजा कोई उठा नहीं पाया, सब नपुंसक है, ऐसा करके वर्णन कर रहे थे, उस समय तो लक्ष्मण खड़े हो गए, उसको सहन नहीं हुआ, लक्ष्मण खड़े हो गए, लेकिन फिर से राम जी ने बैठा दिया। उसके बाद विश्वामित्र का आदेश हुआ भगवान रामचंद्र के लिए, और उस समय भगवान रामचंद्र विश्वामित्र के गुरु के आदेश से उन्होंने उस धनुष की ओर पढ़ना प्रारंभ किए। और उस समय जब भगवान राम आ रहे हैं, क्योंकि सीता जी तो पहले से उनको पति मान चुके थे, उस वाटिका में पहले देखी, उसी समय पति मान चुकी थी, इसलिए अभी भगवान राम जब उस धनुष के पास आने लगे तो उस समय सीता जी प्रार्थना करने लगी। सोचिए, इस संसार की जननी माता सीता प्रार्थना कर रही है। आज क्या प्रार्थना कर रही है?
गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न हो तो सेवा।
माता सीता अभी प्रार्थना कर रही है गणपति भगवान से, क्योंकि सीता माता भी गणपति जी की पूजा करते थे, और आज ये बता रहे हैं कि गणनायक भरदायक देवा, आज के दिन, आज लगे, आज के दिन भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मैं आपकी सेवा पूजा की हूँ, इसलिए मुझे आज आशीर्वाद दीजिए कि प्रभु आए इस धनुष को उठाए और मेरे साथ उनका सविवाह हो। तो इस प्रकार से माता सीता भी गणपति महाराज गणेश जी की पूजा करते हुए, उनको याद करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि कोई विघ्न नहीं आए, बाकी राजाओं की तरह फेल नहीं होना चाहिए, आज राम जी इस धनुष को उठा ले। तो इस प्रकार से गणेश जी के बारे में हम जितना भी बोले उतना कम है, क्योंकि आदि पूज्यम गणादक्षम इत्यादि बहुत आदि पूज्य हैं और बहुत विशेष जीव है। तो हमको आज इस रात्रि, आज के शुभ रात्रि, क्योंकि हमने कथा का श्रवण किया इसलिए शुभ रात्रि हो चुका है ना, तो आज की शुभ रात्रि में हम गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं, हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारे जीवन से विघ्नों को दूर करें, और जिस प्रकार से उनकी गति और उनकी मति भगवान के विषय भगवान की कथाओं में हुई, और उसी प्रकार हमारा भी मति उन भगवान के चरण कमलों में लगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए, और हमारे जीवन से जितने भी विघ्न हो उसको दूर करें, ये प्रार्थना करते हुए आज इस सत्र का हम समापन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गजानन गणपति महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, हरि बोल,
जय
हरे कृष्ण।